दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ।
एरिक भाई, हेलो जूडी बहन, ओम शांति। सीइंग टू बीइंग, इस सुंदर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं जूडी बहन? मैं बहुत अच्छी हूँ, शुक्रिया। एरिक भाई, आपके साथ ये इंटरव्यू लेना बड़ा ही रोमांचक है, क्योंकि हम दोनों ही एक ही देश से हैं। आप कैलगरी से हैं, मैं मॉन्ट्रियल से हूँ। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शायद स्वर्णिम युग में भी हम साथ साथ जाएंगे। ये तो जैसे जन्मों जन्मों की बात है। आपकी रूहानी यात्रा और स्वर्णिम युग के बारे में आपके विचार जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। जूडी बहन, चलिए हम ज्ञान के उन शुरू के दिनों को याद करें, जब मेरा भी उस समय ज्ञान में आना हुआ था। मुझे भी वो दिन याद है जब हमें बताया गया था कि स्वर्णिम युग बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। जब उस संपन्न दुनिया व देवी देवताओं के बारे में आपको जानकारी मिली, तो क्या आपको याद है कि उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? आपके अंदर कौन कौन से विचार उत्पन्न हुए व कैसी भावनाएं उजागर हुई? जूडी बहन, हाँ, मुझे मुरली की एक पंक्ति याद है जिसमें सतयुग के फल फूल व हीरों के बारे में बताया गया था। इन सब बातों को मैं अपने अंदर तक समाने का प्रयास कर रही हूँ व अर्थपूर्ण बनाने का व प्रैक्टिकल जीवन में लाने का अभ्यास कर रही थी। मुझे वो मुरली याद है जिसने बाबा स्वर्णिम युग का विस्तार से बखान कर रहे थे। बाबा ने सुनहरे सिल्क के वस्त्र की बात कही थी, तो मैंने स्वयं को वह वस्त्र पहने हुए महसूस किया। उससे भी ज्यादा उस वस्त्र के स्पर्श से मेरा चरित्र कैसा होगा व मेरी कैसी प्रतिष्ठा होगी, वह मैंने फील किया। वह सिर्फ सुनहरे सिल्क के वस्त्र पहनने की बात नहीं थी, लेकिन उस गहरे अनुभव की बात थी। उस समय मुझे उस स्वर्णिम युग के जीवन का भीतर से बाहर लाने का जैसे अनुभव हुआ। सबसे सुंदर अनुभव की बात यह थी जो मैंने आत्मा की रॉयल्टी, गरिमा व प्रतिष्ठा का गहराई से अनुभव किया, तो ऐसे चरित्रवान स्वरूप को पाने का मेरा इंतजार है। तो आप उस सुनहरे सिल्क का, सुनहरी साड़ी का इंतजार कर रहे हैं जूडी बहन? मुझे पता नहीं वह साड़ी होगी या और कुछ होगा, जो भी होगा बहुत रॉयल होगा। एरिक भाई, उस अनुभव के बाद आपका कैसे विकास हुआ? इतने वर्षों में आपके स्वर्णिम युग के अनुभव और क्या क्या रहे? आपने क्या क्या चिंतन करके अपने सतयुग के अनुभवों को और आगे बढ़ाया है? जूडी बहन, ये बहुत रोचक बात है। जैसे बाबा हमें समझाते हैं कि हमारे चित्त में सब कुछ भरा हुआ है और हमें उन स्मृतियों को सक्रिय करना है। हमें उन स्मृतियों को निखारने के लिए कोई बटन या एक्सेस कोड का विकास करना है। इस एक्सेस कोड या बटन को मैं अपने पहले पहले अनुभवों के साथ जोड़ सकती हूँ। जब बाबा ने कहा कि मैं हथेली पर तुम्हारे लिए स्वर्ग लाया हूँ, बाबा ने जब बहुत सिंपल बात बताई कि तुम एक आत्मा हो, तो उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि बाबा ने मुझे स्वमान दिया है। बाबा ने मुझे स्वमान की दुनिया ऑफर की है। जितना जितना मैंने उस दुनिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उस बीच पर अपना फोकस रखा, उतना उतना वो स्मृतियाँ सक्रिय होती गईं और मेरे व्यक्तिगत पारस्परिक संबंध में निखार आने लगा। निष्ठापूर्वक मैं ये कहना चाहूंगी कि परिवार में भी मुझे ये रिफाइननेस दिखाई पड़ने लगी, बातचीत की क्वालिटी भी श्रेष्ठ नजर आने लगी। मुझे पता नहीं किन शब्दों में मैं इसका वर्णन करूं। मैं जब भी मधुबन जाती हूँ मुझे जैसे स्वर्ग का अनुभव होता है। पारस्परिक बातचीत की क्वालिटी भी वहाँ बहुत ही श्रेष्ठ व ऊंची दिखाई पड़ती है। इससे मुझे सतयुग का गहरा अनुभव करने में मदद मिलती है। एरिक भाई, वर्तमान समय के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप अभी भी सतयुग के बारे में विचार करते हैं वो अपना कनेक्शन बना पाते हैं? एक तरफ सतयुगी नई दुनिया के दासधारी देवता व दूसरी तरफ आपकी व्यस्त दिनचर्या, ये दोनों के बीच के पुल पर आप कैसे चल पाते हैं? जूडी बहन, मैं एकीकरण की बहुत बड़ी समर्थक हूँ। मुझे आध्यात्मिकता के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि मुझे यह बात बहुत आकर्षित करती है कि आध्यात्मिकता का समन्वय मैं रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान भी कर सकती हूँ, चाहे वो साधारण कर्म हो या अत्यधिक व्यस्त रहने वाला कर्म। मेरे विचार से स्वर्णिम युग में हर श्वास पवित्र होगी, तो साधारणता और व्यस्तता दोनों ही प्रकार के कर्म करते उन क्षणों में उस पवित्रता का समन्वय होगा, उस सतयुगी जीवन को वास्तविक तरीके से जीना। इससे मुझे एकीकरण की फीलिंग आती है। यदि बहुत व्यस्त रहते हुए भी मैं बाबा द्वारा बताई गई आंतरिक विधियों का उपयोग करूं और इस पवित्रता को बनाए रखूं, तो सही पटरी पर मैं चलती रहूंगी। वास्तव में मैं इसीलिए ही तो पढ़ाई पढ़ रही हूँ। तो हाँ, मैं उस पवित्रता को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाने का प्रयास करती हूँ। एरिक भाई, कोई कोई सीनियर्स कहते हैं कि उन्हें दृश्यों का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आपके लिए तो दृश्यों का बहुत महत्व है क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों के लिए आप ब्लेसिंग्स, पोस्टर्स आदि आदि बनाते हैं। तो आप स्वयं को सतयुग के दृश्यों से कैसे कनेक्ट करते हैं? क्या आप अपने मन में कोई दृश्य लाते हैं जिससे आपका कनेक्शन सतयुगी दुनिया से हो जाए? जूडी बहन, ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। जब मैं स्वर्णिम युग के बारे में सोचती हूँ तो दृश्य देखने के भी पहले मैं उसे फील करती हूँ। फीलिंग का कनेक्शन दृश्य से है और वो फीलिंग मेरे लिए बहुत लुभावनी होती है, जैसे कि मैं तीसरे नेत्र से फील कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि हम सब कुछ अपने तीसरे नेत्र से ही करते हैं, देखना, फील करना, सुनना, शायद भोजन खाना भी। मुझे लगता है कि संगम युग में हम सब कुछ अपने तीसरे नेत्र से करते हैं, फील भी तीसरे नेत्र से करते हैं। मेडिटेशन के समय हमें अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए अर्थपूर्ण बात यह है कि उस दृश्य के साथ कौन सी फीलिंग जुड़ी हुई है, तो मैं आत्मा की उस क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। इस फीलिंग का स्वर्णिम युग से बहुत गहरा संबंध है, जहाँ आत्मा पूरी तरह से खिली हुई होगी। एरिक भाई, आप अपने वर्तमान स्व परिवर्तन को कैसे भविष्य के साथ कनेक्ट करते हैं? जूडी बहन, ये बड़ी रोचक बात है। कुछ वर्ष पहले हमने सेंटर पर एक प्रयोग किया जो बहुत ही विजुअल था। वह एक रचनात्मक प्रयोग था कि कैसे हम स्वयं को रचनात्मक बनाएं। इस प्रयोग में हमने पवित्र पत्थरों का उपयोग किया है। ये कुछ रहस्यपूर्ण सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने ऐसी कल्पना की कि हीरे के चारों कोनों में पवित्र पत्थर रखे हैं और हमें स्वर्णिम युग के अनोखे अनुभव हो रहे हैं। इसमें हमने चार प्रश्न रखे थे ताकि हमें अपने आदि स्वरूप का अनुभव हो सके। पहला प्रश्न था कि मैं कौन, जिसका उत्तर गुणात्मक तरीके से ही देना था। एक या दो गुणों के द्वारा ही उसका उत्तर देना था कि मैं कौन हूँ। जब मैं उस गुण को फील कर रही थी तो मुझे बाबा के बहुत समीप आने का अनुभव हुआ, परमात्मा के नजदीक होने का मुझे एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं परमात्मा से जुड़ गई। दूसरा प्रश्न था कि मुझे कहाँ से आधार मिलता है, शक्ति मिलती है। यहाँ भी गुण की बात थी, चाहे वो सत्यता का गुण हो या फिर और कोई भी गुण। आखिरी के दो प्रश्न बहुत ही रोचक थे। तीसरा प्रश्न था कि कौन सी चीज मुझ आत्मा को छू जाती है। यहाँ भी जैसे गुणों की बात आती है, ब्राह्मण जीवन के पहले भी जब मैं दूर से भी किसी को देखती थी तो उनकी फीलिंग्स मुझे छू जाती, और जब उस फीलिंग को मैं स्वयं में अनुभव करती थी तो मुझे बहुत ही रियल और स्थिरता की महसूसता होती थी। मुझे उनकी रॉयल्टी, गरिमा और श्रेष्ठता छू जाती थी। तो क्या बात मुझे छू जाती है? इससे मुझे अपनी आध्यात्मिकता को कर्म में लाना, इसका अनुभव हुआ। और आखिरी प्रश्न था कि किस बात से मुझे सम्मान की फीलिंग होती है। तो ये निर्भर करता है कि किन गुणों को मैं पारस्परिक बातचीत में उपयोग करती हूँ। मुझे याद है जब हम ये प्रयोग कर रहे थे तो बहुत ही निष्ठा पूर्वक ढंग से समय देकर हम अपने गुणों का अनुभव कर रहे थे। अगर मैं उस हीरे के बीच में स्वयं को देखती, जिस हीरे के चारों कोनों में पवित्र पत्थर रखे थे, तो तुरंत ही मेरा सत्युगी स्वरूप इमर्ज हो जाता। अभी भी मैं ये प्रयोग करती हूँ। मेरे पास एक छोटा सा कार्ड भी है और ये एक बहुत ही सिंपल व गुणात्मक प्रयोग है। ये जैसे कि एक आध्यात्मिकता की जड़ है जिससे एक बहुत अच्छी फीलिंग का अनुभव होता है। एरिक भाई, तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि स्वर्णिम युग का कनेक्शन हमारे मूल्यों पर, मन की स्थिति पर व चेतना से है जिसको हम वर्तमान समय विकसित कर रहे हैं? सिर्फ ऐसा नहीं कि भविष्य में हम ऐसा बनेंगे, लेकिन वर्तमान समय में भी आप भविष्य की वो इमेजेस को वर्तमान समय के पुरुषार्थ में देखने की कोशिश करते हैं। क्या आपका यही विचार है? जूडी बेन, मुझे लगता है आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को व्यक्त किया है। हमारा गुणात्मक अनुभव कैसा है, ये बहुत ही जरूरी है। बाबा की एक बात जो मुझे बहुत आकर्षित करती है वो है कि भीतर के गुणों को बाहर लाना। साथ साथ बीज व फूल के बारे में जो बाबा ने कहा है, खासकर बीज पर बाबा ने हमारा बहुत ध्यान केंद्रित कराया है। देवी फूल का बीज क्या है? वो है आत्म अभिमानी। मुझे उस बीज की अभी देखभाल करनी। ये बीज अंडरग्राउंड व गुप्त है, लेकिन अगर मैं इस बीज का ख्याल रखूंगी तो इस बीज से अपने आप ही दैवी फूल निकल आए। तो सब कुछ इस बीज में भरा हुआ है। ये बीज देवताओं के अंदर है। तो मुझे अंदर के गुणों पर ध्यान केंद्रित करने की बात बहुत पसंद आई। तो जैसे मैंने पहले सुनहरे सिल्क की बात कही थी, तो ये सुनहरा सिल्क जैसे कि एक बर्तन है, और उस बर्तन के अंदर क्या है, उस मुझे लगता है कि मुझे इसी पर ध्यान देना है। एरिक भाई, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम कैसे अनुभवों से स्वयं को परिवर्तन करते हैं। क्या कभी कभी आपको आश्चर्य लगता है कि ये सब कैसे होगा? हम सब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। कोई कोई अपने पुराने संस्कारों से बहुत जुड़े हुए हैं। कितने लोग अपने सतयुगी संस्कारों तक पहुंच चुके हैं? मैंने बहुत लोगों को नहीं देखा। क्या कभी आपको ये विचार आता है कि क्या हम सही में वहाँ तक पहुँच पाएंगे? जूडी बेन, हाँ, मैं भी कभी ये ख्याल करती हूँ। हमें 100 मीटर की जंप लगानी है और हम केवल 5 मीटर तक ही पहुँचे हैं। एक बी के जो मेरे साथ में है वो नर्स है और डॉक्टर्स के संपर्क में आती है। मैं जब उन डॉक्टर्स को देखती हूँ तो मुझे ये अचंभा लगता है कि कैसे ये डॉक्टर्स पहले स्कूल जाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और फिर कैसे एक दिन छलांग मारकर उस समय पर पहुंच जाते हैं जब वे डॉक्टर बनकर मरीज के साथ ऑपरेटिंग टेबल के पास अकेले ही खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी छलांग हम भी मारेंगे, लेकिन हम इस बात से भी अवगत हैं कि अभी तक हम अति सूक्ष्म हैं। शायद अभी तक की प्राप्ति को स्पष्ट रूप में नहीं देख पा रहे हैं। कुछ ऐसा अनुभव जो मुझे बैले डांस के दौरान हुआ, जो मैं पहले किया करती थी। दूसरे बैले डांसर्स बहुत ही अभूतपूर्ण तरीके से नृत्य करते थे, लेकिन अंदर से उन्हें इस बात की जानकारी रहती थी कि उन्हें अपने ऊपर और क्या काम करना है। उस नृत्य की क्लास में विरले ही किसी को परिपूरक माना जाता था। सुधार सुधार की ही बात होती रहती थी, तो अंदर से उन्हें ऐसा रहता था कि हे भगवान, मुझे स्वयं को कितना कुछ ठीक करना है। लेकिन उनका नृत्य बहुत ही अविश्वसनीय होता था, तो मुझे पता नहीं कि हम स्वयं की जांच कितनी स्पष्टता से करते हैं। निस्संदेह कुछ न कुछ तो रह ही जाता है हमारे विकास के लिए, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि हम उस यात्रा पर कहां तक पहुंचे हैं, हम उस यात्रा में कहां पर बैठे हैं। एरिक भाई, हमारे बाबा भी एक बहुत अच्छे डांस टीचर हैं, क्योंकि वो भी हमेशा हमें कुछ न कुछ सुधार के लिए कहते हैं। जुड़ी बहन, बिल्कुल सही। उस डांस क्लास और इस रूहानी यात्रा में कई समानताएं हैं। एरिक, क्या आप स्वयं को स्वर्णिम युग में भी नृत्य करते हुए देखते हैं? जुड़ी बहन, आपने ये बहुत अच्छा जान लिया। आपके पास तो जैसे पूरा विजुअल पैकेज है। एरिक भाई, जब हमारा ब्राह्मण जन्म होता है, हमें अच्छे अच्छे अनुभवों की आवश्यकता होती है, जैसे स्वर्णिम युग, सोने के महल, ताज, बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और दादियों का प्यार, ये सब हमें भरपूर मिलता है। लेकिन इसके बाद हम रोलर कोस्टर की तरह सेवाओं में व संस्कारों के टकराव में आ जाते हैं। परिवर्तन लाने के लिए क्या हमें इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा? आपकी राय में परिवर्तन लाने के लिए क्या इस अवस्था से गुजरने की आवश्यकता है? क्या इस अनुभव से हमें छलांग लगाने में मदद मिल सकती है? जिस छलांग की बात आपने पहले बताई कि कैसे एक डॉक्टर को अकेले ही मरीज के जीवन को बचाना होता है, वह कौन सी ऐसी अवस्था होगी जिससे कि हमें आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है? क्या इसके बारे में आप अपने विचार बताएंगे? जूडी बहन, हाँ, ये एक रोचक प्रश्न है। बेशक मुझे ये तो पता नहीं कि ड्रामा हमें कैसे उस ओर ले जाएगा, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि जो हमारे चार सब्जेक्ट्स हैं, उन पर हम कैसे पुरुषार्थ करते हैं, जो इस सीरीज में आखिरी सब्जेक्ट सेवा का है, मुझे ऐसे लगता है कि अधिकतर करके सेवा धारणा या स्व उन्नति का ही एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब मुझे कुछ हद तक संतुष्टता व भरपूरता का अनुभव होने लगता है, तब वह रियल सेवा बन जाती है। मैं सोचती हूँ कि परिस्थिति के समय हमें ऐसा न लगे कि हमारे अंदर कोई तनाव पैदा हो गया। मुझे याद है एक बार जब मैं फिटनेस की क्लास ले रही थी, तो क्लास में एक आत्मा ऐसी थी जिसको मिर्गी के दौरे आते थे। अगर इस बीमारी के बारे में किसी को जानकारी होगी तो उन्हें ये पता होगा कि दौरा पड़ने पर हर बार एम्बुलेंस को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। उनकी फाइल में ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो उस इस आत्मा ने ऐसा आवेदन कर रखा था कि कृपया एम्बुलेंस को न बुलाएं और क्लास को जितना जल्दी हो सके शुरू करके चलाते रहे। मुझे याद है मैं ऐसे वातावरण में थी जहां पर बहुत जोर से संगीत बज रहा था, वह पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ था, वे नाच रहे थे, कूद रहे थे, भौतिक स्तर पर बहुत कुछ चल रहा था और एकदम से मेरा ध्यान गया कि कमरे के पिछले भाग में एक आत्मा को मिर्गी का दौरा चढ़ा और वो गिर पड़ी। उस समय मुझे ही प्राथमिक उपचार करना था क्योंकि वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि मैं किसी को बुला सकूं। मुझे याद है उस समय पर मुझे जैसे एक झटका सा लगा। मुझे तो ये ध्यान नहीं कि उस समय मैंने बाबा को ज्यादा याद किया या नहीं, लेकिन एक आंतरिक शांति की फीलिंग ने मुझे स्पर्श जरूर किया। मेरे लिए जैसे मदद पहले से ही मौजूद थी। सारी बातें मुझे विस्तार में तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने बहुत ही शांतिपूर्वक लोगों के सामने इस बात को रखा था। जिस आत्मा को मिर्गी का दौरा आया उसे संभालते हुए मैंने सबको डायरेक्शन भी दिया था। उस समय वहाँ पर असीम शांति से छाई हुई थी। जो कि मिर्गी के बारे में जानते हैं उन्हें ये पता होगा कि ये एक बहुत ही परेशान होने वाला अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर तो शांति का वातावरण था। उस समय मैं सोच रही थी कि ये रूहानी ट्रेनिंग बहुत काम में आ रही है। अगर मैं इस परिस्थिति से नहीं गुजरती तो मुझे कभी ऐसा मालूम ही नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि छलांग लगाने के लिए इस तरह की परिस्थिति की झलक देखना भी जैसे कि पुरुषार्थ का एक हिस्सा है। एक भाई, वाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबके लिए छलांग लगाना उतना दर्दनाक न हो। वैसे तो हमने सुना है कि अंत में तो दर्दनाक सीन आने ही वाले हैं। हो सकता है हमें देवता बनने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक भी लेना पड़े, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो मेडिटेशन के पहले आपसे एक आखिरी प्रश्न है। क्या कोई ऐसी चीज है जो स्वर्णिम युग से आपका नेचुरल तरीके से बहुत सहज रीति से कनेक्शन करा देती है? वैसे तो हम स्वर्णिम युग शब्द का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि हम भविष्य दुनिया या संपूर्णता की स्थिति ऐसे शब्द कहें तो भविष्य की फीलिंग के बारे में आपके अंदर क्या कोई नई सोच चलती है? जूली बहन, जब हम दादी प्रकाशमणि के पुरुषार्थ को सामने रखते हैं या ब्रह्मा बाबा के आखिरी तीन शब्दों को स्मृति में लाते हैं, विशेषकर ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, ब्राह्मण जीवन का कितना सुंदर उदाहरण है। जैसे दादी जी के अनुसार हमारा रूहानी पुरुषार्थ स्वमान और सम्मान इसी पर आधारित होना चाहिए। स्वर्णिम युग पवित्रता का युग। इस युग को हम रेस्पेक्टोक्रेसी की दुनिया भी कह सकते हैं। जब मैंने स्वर्णिम युग के विषय में ये शब्द रेस्पेक्टोक्रेसी सुना तो मेरे अंदर एक नई जागृति आई। मैं ऐसी दुनिया के इंतजार में ही थी। सम्मान का जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सम्मान है तो सब कुछ है। तो स्वमान और दूसरों के प्रति सम्मान का जो बीज है, ये सेंटर पीस मुझे अर्थपूर्ण और रियल लगा। मैं देख सकती हूँ कि इस सेंटर पीस से बाकी सारे पीसेस स्वतः ही आ जाते हैं। जैसे बाबा ने हमें संस्कार और संसार का कनेक्शन बताया है, मेरे लिए ये जैसे भीतर और बाहर की दुनिया को दर्शाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ स्वमान और दूसरों के प्रति सम्मान होगा। वर्तमान समय मुझे इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। एरिक भाई, मैं जरूर इस शब्द रिस्पेक्टोक्रेसी को याद रखूंगा। क्या मैं इसे सही तरह से कह रहा हूँ? जूली बहन, हाँ, कुछ फ्रेंच भाषा की तरह। एरिक भाई, स्वर्णिम युग में शायद हम फ्रेंच भाषा की तरह ही उच्चारण करेंगे। स्वर्णिम युग में जाने के पहले फ्रेंच भाषा का उच्चारण करना आवश्यक सा लगता है। जूडी बहन, वो तो बहुत सुंदर होगा। एरिक भाई, जूडी बहन, अब आप हमें साइलेंस के गहरे अनुभव में ले चलिए। बस स्वर्णिम युग के बारे में आपके विचार रखिए, ताकि हम सब मिलकर उस आने वाली सुंदर दुनिया पर मनन चिंतन कर सकें। जूडी बहन, या जरूर।
बाबा के लिए
बहुत सारे भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। उनमें से एक नाम है
स्पेशलिटी
भगवान,
इज बीइंग एबल टू प्लांट सीड्स एंड केयर फॉर दोज सीड्स,
बीज बोना और उसकी देखभाल करना, ये उस बागवान की विशेषता है। इस रूहानी परवरिश से, स्वर्ग रूपी बगीचा इमर्ज हो जाता है। हर बच्चे के साथ, हर आत्मा के साथ, इस भगवान का अनोखा संबंध है। अपनी पवित्र दिव्य दृष्टि से
believing in what he sees in me,
वे आत्मा को देख सकते हैं।
I begin to feel
आत्मा की विशेषताओं को देख सकते हैं।
Reclaiming that inner throne,
आत्मा के दिल की सुंदरता को देख सकते हैं। बाबा की दृष्टि पर संपूर्ण निश्चय रखते हुए, मैं आत्मा अपने स्वमान रूपी आंतरिक तत्व विराजमान हो गई। भगवान अपनी दृष्टि से सारे संसार का परिवर्तन कर देते हैं। बाबा की नजर मेरे सत्य स्वरूप है। इस दृष्टि से मेरा आदि देवता स्वरूप, पवित्र दैवी स्वरूप पूरी तरह से खिल जाए। उनकी दृष्टि ने स्वमान रूपी बीज को बहुत ही गहराई तक दिया है। भगवान की दृष्टि ने मेरी दिव्यता को पुनः उजागर कर दिया। मेरे भाई, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रूहानी स्तर पर स्वर्णिम युग के एक बहुत ही सुंदर पोस्टर की रचना की। रूहानी तरीके से आपने बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क तैयार किया। हम सबके साथ अपने विचार, फीलिंग्स व सत्ययुग के अनुभव शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जूडी बहन, इससे मुझे भी खुशी मिली। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।